الحمد لله نصلي على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ये कुछ सवालात हैं जो मुझे दिए गए हैं. पहला सवाल इंसानी रूह के इंतकाल से मुतालिक है. इंसानी रूह दुनिया से इंतकाल के वक्त इस जिस्म को छोड़ देती है तो कयामत में दोबारा उठने के दरमियान के वक्फे में उसको कोई और जिस्म मिलता है. इरशाद बारी ताला है, रब ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया था कि लोग तुमसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, तो ऐ पैगंबर कह दीजिए कि रूह मेरा अम्र है. यहां मुख्तलिफ नशिस्तों में रूह के बारे में जिक्र होता रहा, रूह पर सैर हासिल गुफ्तगू भी हुई. जैसे मैंने अर्ज किया उस गुफ्तगू के दौरान कि रूह अल्लाह के नूर से लिए गए हिस्से में से फर्दर एक हिस्सा है, तो नूर का हिस्सा भी नूर होता है. तो रूह बजात खुद एक नूर है. एक स्टेज पर मैंने अर्ज किया था कि जब रब ताला ने रूहों को तख्लीक किया, जब रूह इंसानी तख्लीक हुई थी, तो तख्लीक के बाद उसे उस आसमान पर उतारा गया था जहां फरिश्ते कयाम करते हैं, और वहां रूह इंसानी को नूर का गुस्ल दिया गया था, और उस गुस्ल के बाद उस स्टेज पर इंसानी रूह का नाम रखा गया था, फिर उसे तीसरे आसमान पर उतारा गया और नए सिरे से फिर इसे गुस्ल दिया गया. उस गुस्ल के बाद इसका नाम रूह मुतहर्रका रख दिया गया था. जो पहला गुस्ल था उसके बाद रूह का नाम द पायस सोल रखा गया था. दूसरा गुस्ल जो तीसरे आसमान पर इसे दिया गया, उस गुस्ल के बाद ये द मूविंग सोल कहलाई थी. और अब जब जमीन पर कोई जिस्म वजूद में आता है, जिसका तफसीली बयान मैंने चंद नशिस्त पहले किया था, तो उस जिस्म के वजूद में आने के बाद उस जिस्म से मुतल्लका रूह को आसमानों पर रवानगी का हुक्म होता है, और फरिश्ता उस रूह को उससे मुतल्लका जिस्म में मौजूद दिल के वसती हिस्से में रख देता है, और वो रूह उस जिस्म की तबई उम्र पूरे होने तक दिल के उस दरमियानी हिस्से ही में रहती है. जब रब ताला की तरफ से अता करदा जिंदगी की मोहलत खत्म होती है और इंसान अपने रब की तरफ लौटता है, इस जहान से आसमानों की तरफ इंतकाल करता है, तो चूंकि ये जिस्म फानी है, मादी है, ये जिस्म तो यहीं रहता है और जिस खमीर से उठा होता है उसी खमीर में जाके मिल जाता है, लेकिन रूह अपने असल की तरफ लौट जाती है. लेकिन चूंकि इस रूह के जिम्मे इस दुनिया में जो कुछ उसने किया है उसका हिसाब किताब देना बाकी होता है, तो वो इस ट्रांजिट पीरियड के लिए उसे आलम बरजुख में रख दिया जाता है. आलम बरजुख के भी दो दर्जे हैं, उन दोनों दर्जों का बयान बड़ी तफसील से हुआ था. तो रूह अपने जिंदगी के अमाल की बुनियाद पर मतल का हिस्से में रहने लगती है उस वक्त तक जिस वक्त तक के यौम हिसाब नहीं आ पहुंचता और तमाम इंसान रब के हजूर पेश नहीं होते। अब रहती तो रूह आलम बरजुख में है, अगर उसके अमाल रीजन एबल हद तक अच्छे हैं तो रब ताला उस रूह को ये आजादी दे देता है, उसे ये सहूलत हासिल हो जाती है रब की तरफ से कि वो अपने मदफन और अपने मकान के साथ एक ताल्लुक कायम रख सके। तो रूह जिस घर से ताल्लुक रखती है और जहां उससे मुतल्लिका जिस्म दफन किया जाता है उस जगह के साथ एक ताल्लुक कायम रखती है, यह जरूरी नहीं कि हर वक्त उस जगह पर मौजूद हो, यह भी जरूरी नहीं कि हर वक्त मौजूद ही ना हो। इसीलिए जो हदीस है जिसमें ये जिक्र है कि तुम कब्रस्तानों में जाया करो और कब्रस्तान के जो आदाब हैं उस ज़िम्न में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी थी उसके मुताबिक जब हम कब्रस्तान जाएं या कब्रस्तान के करीब से गुजरें तो अस्सलामु अलैकुम भी कहें और वालेकुम अस्सलाम भी कह दें। उसके पीछे हिकमत यही है कि एक आम इंसान जिसे कशफुल कबूर हासिल नहीं है उसको ये मालूम नहीं हो सकता कि इस वक्त वो रूह उस कब्र में मौजूद है या नहीं है। लेकिन चूंकि सलाम का जवाब देना हम पर फर्ज है तो सलाम का जवाब जाया न जाए कि उस सलाम का जो हमने किया है कि अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर, वो जाया न जाए, उसका जवाब दिया जाए। और अगर रूह मौजूद नहीं तो जवाब नहीं आएगा, तो उसको वालेकुम अस्सलाम भी हम खुद कहते हैं कि अगर रूहें मौजूद हैं तो जवाब आ जाएगा गरचे हमें सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो हम सलाम को जाया न होने दें, उसका जवाब भी खुद ही हम दे देते हैं। ये ताल्लुक तो कायम रहता है लेकिन इस जहान से जाने के बाद से लेके यौम हिसाब तक उसे कोई जिस्म नया अता नहीं किया जाता। ये जो जिस्म हमारा मादी जिस्म जो हमें हासिल है इस दुनिया में रहते हुए जिंदगी में, इसी का एक मिरर इमेज ऊपर आसमानों पर मौजूद है हमारा, जिसे रूहानी जिस्म भी हम कह सकते हैं। जिस तरह के दुनियावी खुराक जो कुछ हम खाते हैं यहां वो इस जिस्म की खुराक है, ये जिस्म उस खुराक पर पलता है, फूलता है, बढ़ता है। इसी तरह वो जिस्म जो इसका मैंने कहा कि रूहानी जिस्म कह लीजिए लेकिन उसकी सही जो इस्तलाह है वो है जिस्म मिसाली। वो जिस्म मिसाली इसलिए उसे कहा जाता है कि जैसे मैंने मिरर इमेज कहा, मिरर इमेज का तर्जमा दर हकीकत उर्दू में जिस्म मिसाली होगा। उस जिस्म की खुराक हमारे अमाल हैं और वो जिक्र अजकार हैं जो हम करते हैं। जिस तरह से आप सबको मालूम है कि चार हैं बुनियादी अनासर, उसके बाद दूसरे अनासर हैं, इसी तरह जिक्र अजकार जो हैं उनकी भी बुनियादी अंसर हैं या तासीर है, जो भी आप कहना चाहें। हर रूह की एक केमिस्ट्री है, हर जिस्म की एक बॉडी केमिस्ट्री है, उसका एक बुनियादी अंसर है कि किस बुनियादी अंसर से वो ताल्लुक रखती है, हवा से, आग से, पानी से, मिट्टी से। जब हम ऐसा जिक्र करते हैं जो हमारी रूह और हमारी जिस्म की केमिस्ट्री से मुताबकत रखता है तो हमारा जिस्म मिसाली फलता फूलता है, बढ़ता है, हमारे अमाल नेक हैं तो हमारी रूह में बालिदगी पैदा होती है। रूह की बालिदगी या लताफत जो जो बढ़ती जाती है हमारी रूह की परवाज भी बढ़ती है। इसी तरह जो जो हम मवाफिक जिक्र अजकार करते हैं तो हमारा जिस्म मिसाली सेहतमंद होता है। जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे अमाल का सिलसिला मुनकता हो जाता है और गुनाह और सवाब का सिलसिला भी यही मुनकता हो जाता है हमारे साथ। तो रूह का مزید لطیف ہونا، وہ سلسلہ بھی وہیں کا وہیں رک جاتا ہے. اور اسی طرح ہمارا جسم فانی چونکہ مٹی میں چلا جاتا ہے، اس کا خوراک کا سلسلہ بند ہونے سے وہ گلنے سڑنے لگتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے. قیامت کے روز حکم الہی کے تحت تمام انسان جی اٹھیں گے دوبارہ، اور حساب کتاب اللہ کے حضور دیں گے. پھر اس تمام پروسیس کے درمیان ہمیں کوئی نیا جسم عطا نہیں ہوگا. اگلا سوال، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کمرے میں مختلف اداکاروں یا کھلاڑیوں کی تصویریں لگا لیتے ہیں، کیا اسلامی نقطۂ نظر سے یہ درست ہے؟ اسلام میں تصاویر کا لگانا مناسب نہیں ہے، اسی طرح اسٹیچوز بنانے کی ممانعت ہے، خواہ وہ یادگار کے طور پر کیوں نہ بنائے گئے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے اس حکم کے پیچھے، کہ جس وقت جزیرہ نما عرب میں اسلام انٹروڈیوس ہوا تو وہاں زیادہ تر قومیں بت پرست بستی تھیں، اور جزیرہ نما عرب کے جس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اللہ کا پیغام دیا وہاں تو کلیتاً بت پرست تھے. چونکہ ان کی پچھلی کئی نسلیں، ان کے آبا و اجداد ایک بہت لمبے عرصے سے بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو پرانی چیزوں کو، پرانی روایات کو چھوڑنا انسان کے لیے خاصا دشوار ہے. تو ایسا نوٹس کیا گیا کہ مسلمانوں نے اسلام تو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے اور مخلص بھی تھے اسلام کے لیے، سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ بتوں سے جو پچھلی کئی صدیوں سے پیار چلا آ رہا تھا وہ گیا نہیں. تو لوگ نماز کے دوران بھی بتوں کو اپنے بازوؤں کے نیچے چھپا کے لے جاتے تھے. اس قباحت کو ختم کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے رفع یدین کا حکم دیا تھا، اور اسی روایت کو کلیتاً ختم کرنے کے لیے اسلام میں اسٹیچوز جو یادگار کے طور پہ بنائے جاتے ہیں ان کو بھی منع کر دیا. تصویر بھی بت ہی کی ایک اور صورت ہے. آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا کہ وہ بیچارے والدین جن کی اولاد ان سے جدا ہو جاتی ہے قضاء الہی کے تحت، ماں باپ دکھ کی وجہ سے اپنی اولاد کی تصویر کے ساتھ گفتگو کرتے دکھائی دیں گے آپ کو. کچھ حضرات بچے کی سالگرہ مناتے ہیں جو بیچارہ اس دنیا سے جا چکا، ان کے محبت کا اور اٹیچمنٹ کا اظہار ہے، تو اس سالگرہ مناتے وقت جہاں کیک کاٹا جا رہا ہے وہاں اس کی تصویر بڑے سائز کی رکھ دیتے ہیں. تو یوں یہ بت پرستی ہی کی ایک شکل اختیار کر جاتی ہے یہ چیز. اس کا کسی طرح کا بھی امکان کہ بت پرستی کی طرف راغب نہ ہوں مسلمان، اس سلسلے میں یہ حکم آیا تھا کہ یادگار کے طور پہ بنائے گئے اسٹیچوز نہ نصب کیے جائیں، وہ بنائے ہی نہ جائیں، اور تصویریں میری گھروں میں نہ لگائی جائیں. اس وجہ سے کسی شخص کے ساتھ محبت، عقیدت، یا اگر اسے ہم آئیڈیالائز کرتے ہیں تو اس کی تصویر کا کمرے میں لگانا مناسب نہیں ہے. ایک اور سوال ہے کہ جب حضرت رابعہ بصری نے رتبہ فقر کی خواہش کی تو غیبی آواز آئی کہ فقر ہمارے قہر کے مترادف ہے، جس کو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو ہماری بارگاہ سے اس طرح متصل ہو جاتے ہیں کہ سرموک فرق نہیں رہتا. फिर हम उन्हें लज्जत वसाल से महरूम करके आतिश फराक में झोंक देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर किसी किस्म का हिजन व मलाल नहीं होता, बल्कि वह हसूल कुर्ब के लिए असर नौ सरगर्म हो जाते हैं। तो क्या फक्र विसाल हक की मंजिल के करीब पहुंचकर फिर दूर हो जाने का नाम है? इस मौजू पर इससे पहले कई बार हमारी बात हो चुकी है। किस्सा यह है कि किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 20वीं मंजिल के बनने के प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए जरूरी यह होगा कि हमें किसी भी बिल्डिंग बनने का जो प्रोसेस है वो बुनियादों की खुदाई से लेके टॉप स्टोरी बनने तक हो। जब तक ये इल्म हमें ए टू जेड नहीं होगा, अलिफ से ये तक का प्रोसेस हमारे इल्म में नहीं होगा, हम उस बिल्डिंग की टॉप स्टोरी के बनने के अमल को समझ नहीं पाएंगे। हजरत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्ला अलैह साहब ने जब रुतबाए फक्र का सवाल रब के हजूर किया था तो वो खुद अभी उस बड़े मकाम तक नहीं पहुंची थी जहां वो पहुंच गई बाद में। बाद में जिस मकाम पर पहुंची वहां तो वो एक हाथ में आग और दूसरे में पानी लेके जन्नत को फूंकने और जहन्नुम को बुझाने चली गई थी कि जन्नत के लालच में लोग इबादत करते हैं और जहन्नुम के खौफ से इबादत करते हैं, मैं इन दोनों चीजों को खत्म कर दूं ताकि लोग इबादत लालच और खौफ के तहत न करें बल्कि इबादत सिर्फ इसलिए करें कि उनका रब लायक इबादत है। ये मकाम तो रुतबे फक्र से बहुत आगे है, ये कामिल बंदगी की हद है जहां पर हजरत बीबी राबिया बसरी जा पहुंची थी। फक्र या रुतबे फक्र तो हासिल ही नहीं हो सकता जब तक के इंसान टू स्टार्ट विद अल्लाह के डूज एंड डू नॉट्स की लिस्ट पर 100% अमल न करे। ऐसे टू स्टार्ट विद इस राह और इस मंजिल का नुक्ताए आगाज ही डूज एंड डू नॉट्स की लिस्ट पर 100% अमल है। फिर उससे आगे जब इंसान डूज एंड डू नॉट्स की लिस्ट पर 100% अमल करता है तो इसके बाद दूसरा कदम उसका उसे वहां ले जाएगा जहां पर इंसान का इरादा, उसकी ख्वाहिशात, उसकी तमन्नाएं, उसके प्लान्स तमाम के तमाम अल्लाह के इरादों के मातहत हो जाएंगे। इसको उर्दू में रजाए इलाही कहते हैं कि जब कोई शख्स अल्लाह की रजा में राजी हो जाए तो वो दूसरा मकाम आ गया उसका। और फिर जब कोई शख्स मुजाहिदा करने लगे और अल्लाह की याद में गुम हो जाए तो ये तीसरा मकाम आ गया, तीसरा कदम आ गया रादर। और जब वो ये चौथा कदम उठा ले कि जहां उसके दिल और दिमाग दोनों से एक आवाज उठने लगे कि बस तू ही तू है, मैं कुछ नहीं, तो समझ लीजिए कि वो फक्र के मकाम तक जा पहुंचा। तो फिर उसे रुतबा फक्र अता हो जाएगा। तो जब उसने ये ही समझ लिया जेन्युइनली, जुबान से नहीं, जुबान से तो मैं भी गुज़श्ता 65 साल से यही कह रहा हूं, लेकिन हकीकत क्या है वो ये है कि मैं हर वो काम करता हूं जिससे मेरे रब ने मुझे मना किया है, सरकशी का ही आलम है मेरा, मैं हर उस काम से दूर भागता हूं जिसको मेरे रब ने करने का हुक्म सादर फरमाया था, सच ये है, और जुबान से मैं ये कहता हूं तू ही तू है बस, तो इसीलिए तो मैं इतना बड़ा फासिक फाजर और लईन मुल्हिद हूं। جینونلی جب اس کے دل نے یہ سمجھ لیا اور دل سے یہ ایک آواز اٹھنے لگی کہ بس تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں، تو سمجھ لیجیے کہ وہ فقر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے. اور جو شخص اس مقام پر آن پہنچا ہے اور اسے رتبہ فقر عطا ہو گیا ہے، تو اس کے بعد وصال ہو یا فراق، اسے تو فرق ہی نہیں پڑتا. وہ تو جائے گا ہر مرتبہ اپنے محبوب کے دروازے پر، اور دستک بھی اس خوف سے نہیں دے گا کہ میرا محبوب کہیں آرام نہ کر رہا ہو، کہیں وہ سو نہ رہا ہو، اس کے آرام میں خلل نہ ہو جائے، وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے. اس کے دروازے کے سامنے بیٹھتا ہے کہ کب میرا محبوب اپنی مرضی سے یہ دروازہ کھول کر باہر جھانکے، میں اس کا ایک بار دیدار کر لوں. وہ اسی دیدار میں خوش ہو جاتا ہے. تو وہاں اس پر کیا وصال اور فراق کا فرق پڑتا ہے، وصال ہو یا فراق؟ وہ تو اپنے دل میں جھانکتا ہے اور اس کا وصال ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا محبوب، اس کی تصویر اپنے دل میں دکھائی دینے لگتی ہے. اس کے محبوب کی تصویر تو اس کی آنکھوں میں جمی ہے، وہ عکس اس کی آنکھوں میں منجمد ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو فزیکلی دیکھنے کی، تو اسے کیا فرق پڑے گا کہ وصال ہو یا فراق. تو فقر کی تمام راہ جو ہے جہاں سے گزرتا ہوا بندہ چلا آتا ہے اور فقر کے مقام پر پہنچتا ہے، تو وہاں حضرت بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی اس خواہش کے جواب میں وہ جو ندائے غیب آتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ انسان اس تمام پروسیس کو، اس تمام راستے کی تفصیل کو جانتا ہو. اور صرف جاننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جب تک انسان نے اسے ذاتی طور پہ پرسنلی ایکسپیرینس نہ کر لیا ہو، اس کی باریکیوں اور موشگافیوں سے واقف ہو ہی نہیں سکتا. اور جب تک کسی چیز کی باریکیوں اور موشگافیوں سے انسان واقف نہ ہو، اسے سمجھ نہیں سکتا. تو یہ درست ہے کہ جب انسان رتبہ فخر پر فائز ہوتا ہے تو اسے جھٹکے لگتے ہیں. وہ جھٹکے یہ نہیں کہ کوئی الیکٹرک شاکس دیتا ہے اسے، لیکن وہ جھٹکے یہ ہوتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کے قریب پہنچا، قربت کی تمام نشانیاں دیکھتا ہے، وہ ان کا انجوائے کرتا ہے. سڈنلی پتہ یہ چلتا ہے کہ قربت ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہاں تو لامنتناہی دوری ہو گئی ہے. اور وہ جھٹکا بڑا خوفناک ہوتا ہے. انسان کشف کا عادی ہو جاتا ہے، اور اگر کشف اختیاری حاصل ہے تو فقیر جب چاہتا ہے حالت کشف میں جاتا ہے، اس میں ڈوبتا ہے، سیر کرتا ہے اجابات الہی کی، سڈنلی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشف بند ہو گیا. اب فقیر کوشش کر رہا ہے کہ میں اس حالت کشف میں چلا جاؤں، وہاں کچھ بھی نہیں، اکلا منتاہی گھپ اندھیرا ملتا ہے پڑھائی کے جواب میں، اس میں دکھائی کچھ نہیں دیتا، پچ ڈارک، ٹوٹل بلیک آؤٹ ہوتا ہے بندہ. پہلے انسان مزے لوٹتا ہے اس بات کے کہ دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس دعا کو فوری طور پہ قبول فرما لیتا ہے، تو اندر سے ایک خوشی کا احساس، یہ نہیں کہ میری دعا قبول ہو گئی، وہ تو تکبر ہے، اس کے اندر ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے سینے سے لگایا ہوا ہے، کہ وہ میری بات سنتا ہے، اسے پوری کر دیتا ہے، میں اس کا لاڈلا ہوں. یہ ایک احساس اور خوشی ہوتی ہے. آل آف اے سڈن تجربہ یہ ہوتا ہے کہ جو دعا کی اس کا نتیجہ اس کا 180 degrees اپوزٹ آیا، جو اللہ سے فرمائش کی اس کے الٹ، اس کے برعکس نتیجہ نکلا. تو انسان سر سے پاؤں تک کانپنے لگتا ہے کہ کیا ہوا، یہ مجھ سے کہاں کوتاہی ہو گئی، मैं रब से इतना दूर क्यों हो गया। आमतौर पर 3 दिन के बाद कैफियत फिर लौट आती, फिर इंसान हालत कश्म में जाने के लिए अल्लाह को याद करता है, फौरी तौर पर कश्म में दाखिल हो जाता है, हालत कश्म में दाखिल होता है, अल्लाह के हजूर दुआ करता है, दुआ कबूल होती है, फिर चलते चलते ऐसा झटका लग जाता है अचानक, बाद का 7-7 दिन के लिए झटका लगता है। वो ऐसा नहीं कि रब सजा दे रहा है, बिल्कुल नहीं, रब तो बड़ा मेहरबान है, वो तो सजा देता ही नहीं, वो तो इतना बड़ा है कि मैं ये कहता हूं कि हमारा कोई गुनाह उसकी रहमत के करीब नहीं पहुंचता कि वो उसको माफ न करे, तमाम गुनाह हमारे उसके रहमत के अहाते में आ जाते हैं, वो इतना बड़ा गफूर रहीम और माफ करने वाला है, सजा नहीं देता रब। ये मेरा ईमान है अपने रब के बारे में, मैं अपने रब को इतना रहीम और करीम समझता हूं कि मैं किसी तौर ये यकीन नहीं कर सकता कि मेरा रब किसी वक्त मुझे सजा दे देगा, क्योंकि ये उसकी शान करीम ही है कि माफ कर देता है। मुझ जैसे बेअंदाज किस्म का गलीज शख्स और खबीस आदमी हूं मैं, तो अगर वो मुझ जैसे इंसान को सीने से लगाता है तो नेकों को तो मालूम नहीं क्या करता होगा। दर हकीकत ये भी उसकी एक रहमत है इंसान पर कि ये ऐसे झटके दे देता है, ये जो विसाल से हालत फिराक में ले जाता है, फिर हालत फिराक से हालत विसाल में ले जाता है, ये भी उसकी रहमत का एक रंग है। अगर हमेशा ये होता रहे कि इंसान जब चाहे हालत कष्ट में जाकर जो चाहे देख ले, जो दुआ करे वो कबूल हो जाए, तो इंसान में तकब्बुर आने लगता है और उसकी जुबान से ये अल्फाज अदा होने लगते हैं, मैं अभी दुआ करता हूं कबूल हो जाएगी, ये तकब्बुर है। रब इतना बड़ा है कि हम उसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कभी, खुदाई उसकी है, कुदरत उसकी है, हम आजजाना दरखास्त कर सकते हैं रब के हजूर। तो वह हमें झंझोड़ देता है कि तुम मेरी तमाम तर दोस्ती के बावजूद रहोगे मेरे बंदे, हकीर बंदे, ऐसे आजिज बंदे जिनके इख्तियार में कुछ नहीं, चाहे तुम मेरी दोस्ती के किसी मकाम पर चले जाओ, हो तुम मेरे हकीर बंदे। तो इंसान को वो झटका फिर तकब्बुर से अज्ज की तरफ ले जाता है, तो वो भी इस रंग में रहमत है, कहर नहीं है, वो उसका कर्म है। वो एक और सवाल है, ये खूब इल्मी बहस छिड़ जाएगी अब। हज़रत शेख अब्दुल क़ादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अफराद में होता है, अज़राए करम अफराद की वजाहत फरमा दीजिए। उम्मती तो हम सब हैं, हर वो आदमी जो रब को एक जानता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला का सच्चा और आखिरी रसूल मानता है, कुरान पाक को किताबे इलाही मानता है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती है। बात यह है कि रूहानियत में एक्सप्रेशंस हमारे दो जगहों से बहुत ज्यादा आए, 90% एक्सप्रेशंस अरबी से हैं और बाकी 10% एक्सप्रेशंस फारसी हैं। उसकी वजह यह हुई कि वलायत गर्चे कुछ मखसूस लोगों की मीरास नहीं है, जिस शख्स ने भी अल्लाह की बंदगी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार किया और एक खास तर्ज जिंदगी और असलूब जिंदगी अपना लिया, बल्कि इसकी वजाहत मुझे कर देनी चाहिए ताकि हम इस किस्से में ना पड़ जाएं कि वो खास तर्ज जिंदगी और असलूब जिंदगी क्या चीज है। ہر وہ شخص جس نے وہ خاص طرز زندگی اس انداز کا کہ اس نے اپنے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت کر لیے, سونر اور لیٹر ون وے اور دی ادر اس کو ولایت حاصل ہو ہی گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ میراث کسی ایک مخصوص طبقے کی نہیں ہے, لیکن سما اور دی ادر ہوا یہ ہے کہ اولیاء اکرام میں ایک بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہوئی جن کا تعلق اہل بیت سے تھا, ان کی اولاد سے تھے. اس کی وجہ کوئی اور نہیں نظر آتی مجھے سوائے اس کے کہ چونکہ اہل بیت کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی تھی, بہت زیادہ قربت رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس سے بھی زیادہ ایک ایڈوانٹیج اہل بیت کو یہ رہا کہ کچھ چیزیں جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں انسان میں, تو اہل بیت کے جینز میں کچھ وصف آ گئے اور وہ وصف اللہ کے نزدیک خاصے پسندیدہ ہیں. تو اس وجہ سے اولیاء اکرام کی ایک بڑی اکثریت اہل بیت کے خاندان سے, ان کی اولاد سے تعلق رکھتی ہے. بنو امیہ کے زمانے میں واقعہ کربلا کے بعد کچھ عرصہ تو اہل بیت مدینہ منورہ اور عرب کے دوسرے حصوں میں رہے, لیکن اتنے زیادہ یہ دل گرفتہ تھے واقعہ کربلا سے اور اس کی یادیں اتنی تلخ تھیں ان کے لیے کہ ان میں سے کافی لوگ ہجرت کر گئے عرب علاقے سے. کچھ بنی امیہ کے مظالم ایسے تھے. تو اسی دوران بنو عباس نے واقعہ کربلا اور سیدوں کے اہل بیت کے ساتھ ہونے والے واقعات اور طرز سلوک پر کیش کیا اور مسلمانوں کے جذبات بھڑکائے اور یوں یہ اقتدار میں آ گئے. خیال یہ تھا اور جیسے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا مداوع کریں گے اور ہم ان کے کہنے پر چلیں گے, کیا انہوں نے اس کے برعکس. تو اہل بیت پر صرف اس خوف سے, اہل بیت کی گرفت بڑی مضبوط ہے مسلمانوں پر, تو یہ ہمارے اقتدار کے لیے کسی وقت بھی خطرہ بن سکتے ہیں, بنو عباس نے بنو امیہ سے زیادہ مظالم ڈھائے ہیں اہل بیت پر. تو اہل بیت ان مظالم سے تنگ آ کے مختلف علاقوں کی طرف نکل گئے تھے. یہ پہاڑی سلسلہ جو ترکی سے ہوتا ہوا ایران میں داخل ہوتا ہے اور ایران سے افغانستان میں داخل ہوتا ہے, یہ ایسے کاموں کے لیے ظلم سے تنگ آئے ہوئے لوگ جب ہجرت کرتے تھے تو یہ سب سے محفوظ راستہ تھا کہ پکڑا نہ جائے بندہ. تو عام طور پہ ہجرت انہی راستوں سے ہوئی, ان پہاڑوں کے اندر سے دشوار گزار راستے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اولیاء اکرام کی بڑی تعداد جن کا تعلق اہل بیت کی اولاد سے ہے, ان کا اوریجن ایران اور افغانستان دکھائی دیتا ہے. یہ پہاڑی سلسلہ ہے جس کے ذریعے انہوں نے ہجرت کی, اور ایران چونکہ پہلا بڑا مہذب ملک آتا تھا, ترقی یافتہ تھا, تو ایک بڑی اکثریت یہیں سیٹل ہو گئی. پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو افغانستان تک آ گئے اور بعد میں افغانستان سے پھر انڈیا میں داخل ہوئے. یہ ساری اس کی بیک گراؤنڈ ہے. تو روحانیت چونکہ انہی اولیاء اکرام کے ذریعے سے انٹروڈیوس ہوئی اس خطہ میں جسے ہم انڈین سب کانٹیننٹ کہتے ہیں, تو اس کی اصطلاحیں ٹرمینالوجی وہ زیادہ تر عربی میں ہے. تو یوں ہمیں کچھ کنفیوژن ہوتا ہے الفاظ کے سلسلے میں. ہم میں سے ہر آدمی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہے, اور فرد کی جمع افراد ہے. یہ تو اردو کی کہانی ہے, لیکن جن معنوں میں یہ افراد کہے گئے ہیں اس کو میں کھول کر تو بیان نہیں کروں گا کبھی, کیونکہ یہ ان رازوں میں سے ہے جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. लेकिन आपको समझाने की खातिर मैं जिस हद तक जा सकता हूं उस हद तक इनडायरेक्टली चला जाऊंगा। इस मुल्क में 16 करोड़ लोग रहते हैं, हम सब 16 करोड़ के 16 करोड़ पाकिस्तानी कहलाते हैं, हम इसी मुल्क के अवाम हैं। लेकिन हम में से कुछ 380 या कुछ ऐसी तादाद हैं तो वो पाकिस्तानी हैं भी अवाम में से, वो MNAs कहलाते हैं, और उनमें से भी एक आदमी वजीर आजम कहलाता है और कुछ लोग वजीर कहलाते हैं। हैं हम ही में से, हैं अवाम ही, पाकिस्तानी हैं वो भी। हम में से होने के बावजूद उनको एक अलहदा इज्जत मिलती है, दर्जा बरदर्जा उनके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं। तो कुछ यही मामला हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब का भी है, और अफराद उम्मीद है आप समझ गए होंगे जिस जो मैंने कहने की कोशिश की है। बस हम लोग जरा इतनी सी बात समझ लें कि वो चाहे अफराद में से हैं या अवाम में से हैं, लेकिन हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका औलिया अकराम में कोई सानी नहीं है। और एक चीज मैं और गुजारिश कर दूंगा, जान बचाने का आसान नुस्खा, ये बड़ा आजमूदा और आसान नुस्खा है अपनी जान बचाने का। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि फलां न्यूरोसर्जन कैसा है, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं न्यूरो सर्जरी की ABC भी नहीं पढ़ा हुआ। तो बजाय इसके कि मैं कमेंट कर दूं कि जी फला न्यूरोसर्जन जो हैं वो तो ऐसी बेकार हैं, उनको क्या पता न्यूरोसर्जरी क्या होती, तो कल को मुझसे सवाल कर लिया जाए कि भाई तुम न्यूरोसर्जरी को जानते हो क्या होती है, तो मैं फंस जाऊंगा। किसी भी इंसान की स्किल्स के बारे में कमेंट करने के लिए जरूरी है कि मैं उससे बड़ा प्रोफेशनल हूं, प्रोफेशनली मैं उस काम को उससे कहीं ज्यादा जानता हूं, फिर मैं कमेंट कर सकता हूं। तो अगर मुझे कुछ मालूम ही नहीं, मैं स्कूल का मुंह ही नहीं देख सका और सारी उम्र मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर गंडेरियां बेच रहा हूं, तो मैं किसी न्यूरोसर्जन के बारे में किस तरह से कमेंट कर सकता हूं? तो फिर शर्मिंदगी उठाऊंगा मैं। तो ये इतने बड़े लोग हैं कि मुझ जैसा लईन और मुल्हिद इनके बारे में क्या जानेगा? तो मैं इनको अंडर डिस्कशन ला के अपनी शामत को आवाज क्या दूं? क्या ये बेहतर नहीं कि मैं कह दूं कि भाई बादशाहों के मामला तो बादशाह ही जानते हैं, मुझे क्या मालूम कि ये क्या है? यूं जान बच जाएगी, बड़ा आसान नुस्खा है। वरना हम कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे दो बड़े औलिया कराम के दरमियान, फंस हम जाएंगे, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे। याद रखिए, दो हाथियों की लड़ाई में हमेशा घास कुचल जाती है। तो बेहतरी ये है कि इन पर कमेंट न किए जाए, इनसे दूरी रहा जाए, इनको दूर से अदब से झुक के सलाम किया जाए, तो आदमी महफूज रहता है, इनाम पाता है। आप मैं इशारतन मैंने कुछ बात समझा दी थोड़ी सी कि कुछ MNAs कहलाते हैं और उन्हीं में से एक वजीर आजम भी होता है, उन्हीं में से कुछ लोग वजीर भी कहलाते हैं और उनको दर्जा बदर्जा प्रोटोकॉल्स हासिल होते हैं। बस इतना ही काफी हो जाना चाहिए आपके लिए और मेरे लिए भी, और इन चीजों से दूर रहने की कोशिश कर लीजिए, महफूज रह जाएंगे। न सिर्फ महफूज रहेंगे, इनाम पाएंगे। उनसे हाथ बांध के कह दीजिए, हजूर वो बहुत बड़े हैं, हम नहीं कुछ अर्ज कर सकते, हमें क्या मालूम इतने बड़े। अगर वहां कमेंट कर सकते होते तो हम खुद ना कुछ चीज होते।